हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 50, 51, 52 एंड 53। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वताम् विदुरकाष्ठाय मुहुर्कुयोगिनाम् नीरस्तसाम्या दिशये नराधसा स्वधामनि भ्रमणीरंस्यते नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्पणं लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात हूणा द्रपुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवनाख सादया येने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वता च स्यसितिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत्किलास्यत समीरिषीणां ऋषभप्रसीदत। भूतैर्महत्ते य इमा पुरो विभो निर्माय शीते यदमोषु पुरुष भुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मक सोलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखम्बुरुहासवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं प्रचोदयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिके। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशास्त्रिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरे स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 50 जिसमें ब्रह्मा जी नारद मुनि को भगवान के दिए हुए इस महान ज्ञान श्रीमद् भागवतम की महिमा बताते हैं और जिस भगवान ने भागवतम हमें प्रदान किया है उस भगवान की महिमा बता रहे हैं, क्योंकि जो वस्तु जहाँ से आई है वो जितना महान व्यक्ति है उसी के द्वारा जो दी हुई वस्तु है वो भी कितनी महान हो सकती है। तो भगवान के विषय में बताते हुए कहते हैं, सोयम ते विहितस्तात भगवान विश्व भावना समासेन हरे नान्यत् अन्यस्मात् सदसच्चयत्। हे प्रिय पुत्र, मैंने तुम्हें संक्षेप में प्रकट जगतों के सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बतलाया। गोचर तथा तत्विक अस्तित्व का कारण भगवान हरि के अतिरिक्त और कोई नहीं, यानी वो भगवान जिसने संपूर्ण ब्रह्मांडों को बनाया, जिसने सब गोचर और तात्विक जो चर चर अचर सब कुछ का जो पालन करने वाला है, सृजन करने वाला है, प्रलय करने वाला है, उसके विषय में बताने के बाद आज श्लोक नंबर 51 में ब्रह्मा जी कहते हैं, इदं भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितम् संग्रहोयम् विभूतीनां त्वमेतत् विपुलीकुरु। इदं ते भागवतम्, इदं भागवतम् नाम, इदं मना ये भागवतम् मतलब भगवान का विज्ञान। ये जो श्रीमद् भागवतम् है वो भगवान का विज्ञान है। नाम यानी नामक, यन्मे भगवतोदितम्, यन्मे जो मुझे किसने दिया है, भगवता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, उदितम यानी प्रकाशित हुआ है। और संग्रहोयम विभूति नाम, संग्रहो मतलब संकलन किया, अयम उसकी विभूति यानी विभिन्न शक्तियों का, त्वमेतत् विपुली कुरु, त्वम एतत्, त्वम मतलब तुम, एतत् यानी ये जो भगवत विज्ञान या भागवतम है, विपुली यानी विस्तार, कुरु करो यानी ये जो भागवतम महापुराण है वो कितना महत्वपूर्ण है। ये भागवतम पुराण जो है वो एकमात्र जीव का कल्याण करने वाला है, क्योंकि साक्षात भगवान भागवत के रूप में हमारे पास है। इसलिए ब्रह्मा जी नारद मुनि को कहते हैं, हे नारद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ही मुझे श्रीमद् भागवत नामक यह भगवान का विज्ञान संक्षिप्त रूप में बतलाया था, और यह उनकी विभिन्न शक्तियों का संग्रह है। अब तुम स्वयं इस विज्ञान का विस्तार करो। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भागवत का सार लगभग आधे दर्जन श्लोकों में श्री भगवान द्वारा वर्णित है जो आगे दिया गया है। यह भगवान का विज्ञान है और भगवान का समर्थ प्रतिनिधि करता है। भगवान परम पूर्ण होने के कारण यह श्रीमद् भागवतम भगवत विज्ञान से अभिन्न है। ब्रह्मा जी को यह ज्ञान सीधे भगवान से प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने नारद को सौंपा, और फिर नारद ने श्री वेद व्यास से उसे विस्तार करने का आदेश दिया है। अतः परमेश्वर का दिव्य विज्ञान संसारी झगड़ालु व्यक्तियों द्वारा किया गया कपोल कल्पित तर्क नहीं है, वरना यह शाश्वत शुद्ध एवं संपूर्ण ज्ञान है जो तीनों गुणों की सीमा से परे है। इस प्रकार भागवत पुराण दिव्य वाणी के रूप में भगवान का साक्षात अवतार है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस ज्ञान को भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी से सूत गोस्वामी की श्रृंखला में चला आ रहा गुरु शिष्य परंपरा में भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से प्राप्त करे। वैदिक वृक्ष का पक्व फल अचानक ऊंची शाखा से पृथ्वी पर गिरकर टूटे बिना एक हाथ से दूसरे हाथ में होकर नीचे उतारा आता है। अतः जब तक उपर्युक्त गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक प्रतिनिधि के इस भगवत विज्ञान को नहीं सुना जाता, तब तक मनुष्य के लिए भगवत विज्ञान की रूपरेखा को समझ पाना मुश्किल कार्य होगा। इसे उन व्यवसायी भागवत वाचकों से नहीं सुनना चाहिए जो श्रोताओं की इंद्रियों को तुष्ट करके जीवकों पर पार्जन करते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर मैसेज दे रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है वो भगवान से अभिन्न है और साक्षात भगवान ने ही प्रदान किया है, इसलिए श्रीमद् भागवतम को एज इट इज ग्रहण करने का तरीका यह है कि परंपरा से आए हुए किसी शुद्ध वैष्णव के द्वारा ही इसको स्वीकार किया जाए, क्योंकि ये तो वैदिक कल्पत्र वृक्ष का एक पका हुआ फल है और वो फल तभी एज इट इज आपको प्राप्त हो सकता है जब आप गुरु परंपरा में किसी शुद्ध वैष्णव से इसको श्रवण करते हो, वरना तो इसको जो अलग से अपनी मन बुद्धि से बताएगा वो उसको अवश्य दूषित कर देगा। इसी श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसको हमें शुद्ध वैष्णवों के द्वारा सुनना चाहिए, ऐसे भक्तों के द्वारा नहीं सुनना चाहिए जो कि व्यवसायी भागवत वाचक हैं, जैसे बस धन लेते हैं, धन प्राप्त करके वो भागवत कथा करते हैं, जो श्रोताओं की इंद्रियों को तुष्ट करने की करके जीव का जो बस ये चाहते हैं कि हम लोग को ना जो सुनने के लिए आए उनको एंटरटेन करें, अच्छे अच्छे गाने बीच में गाएं, शेर पढ़ें, बहुत है ना भजन वजन धूम धड़ाका करके लोगों को एंटरटेन करें और ज्यादा पैसे मिले, ऐसे भक्त जो दूसरे को प्रसन्न करने के लिए अपनी भागवत कथा को अपने उनके हिसाब से बोलते हैं, वो कभी भी जीव को भगवान का भक्त नहीं बना सकते। जो अपनी मशहूरी करने के लिए चाहते हैं वो कभी इस शब्द को एज इट इज नहीं, जो भगवान का नाम बढ़ाना चाहते हैं, जो भगवान की भक्ति बढ़ाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जीव कितना दुखी है, बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंस रहा है, ऐसे भक्त जो है वो उनके द्वारा यदि हम भागवत कथा को सुनते हैं तभी उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त होता है। इसलिए प्रभुपाद जी सावधान करते हैं और इसी के लिए ब्रह्मा जी नारद मुनि को आदेश दे रहे हैं श्लोक नंबर 52 में। ब्रह्मा जी कहते हैं, यथा हरो भगवती नृणं भक्ति भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारी इति संकल्प्य वर्णय यथा हरो भगवती नृणं भक्ति भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारी इति संकल्प्य वर्णय। शब्दार्थ यथा हरो भगवती, यथा मन जिस प्रकार, हरो मन भगवान श्री हरि में, भगवती यानी भगवान में निर्णाम भक्तिर भविष्यति, निर्णाम मतलब मनुष्यों के लिए, भक्ति यानी भक्ति, भविष्यति यानी प्रकाश। भागवत का एक ही उद्देश्य है कि इसको पढ़कर भगवान के श्री चरणों में भक्ति प्रकाशित हो। और आगे कहते हैं सर्वात्मनि खिलाधा, सर्वात्मन यानी परम पूर्ण, अखिल आधारो सबके आश्रय, इति इस प्रकार संकल्प्य यानी दृढ़ निश्चय द्वारा वर्णया तुम वर्णन करो। अनुवाद, कृपया तुम इस भगवत विज्ञान का संकल्प पूर्वक इस विधि से वर्णन करो जिससे कि सभी मनुष्य प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सकें। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवत भक्तिमय सेवा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ मनुष्य के संबंध की वैज्ञानिक प्रस्तुत का दर्शन है। ये वास्तव में भगवान के साथ जीव का संबंध तभी निर्माण होगा जब वो भगवान की इन पवित्र गाथाओं को श्रवण करेगा। तो कलयुग के पूर्व भगवान तथा उनकी शक्तियों को जानने के लिए इस प्रकार के ज्ञान ग्रंथ की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कलयुग के आरंभ होते ही मानव समाज धीरे धीरे पापाचार के चार सिद्धांत यथा परस्त्री से अवैध संबंध, मादक द्रव्य सेवन, द्यूत क्रीड़ा तथा अनावश्यक पशु हिंसा से प्रभावित होने लगा। इन आधारभूत पाप कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य ईश्वर के साथ अपने शाश्वत संबंध से धीरे धीरे उसको भूलने लगा। इस तरह मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य के प्रति एक प्रकार से अंधा हो गया। वास्तव में जीवन का जो परम उद्देश्य है वो हर युग में जीव को याद रहता है, भले किसी भी तरह से ना जीव अपने जीवन को निर्वाह करता है, लेकिन उसको पता होता है कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य जो है वो जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करना। ये कलयुग ऐसा है कि जीव के पास इतनी बुद्धि ही नहीं है कि वो अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ सके। इसीलिए भगवान की कृपा है हमारे ऊपर कि भगवान ने श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता जैसे ग्रंथों में जीवन का चरम उद्देश्य दिया है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे, जीवन का चरम उद्देश्य गैर जिम्मेदार पशुवत जीवन अर्थात आहार निद्रा भय तथा मैथुन इन चार पाश्विक कृत्यों में कृत्रिम ढंग से लगे रहना नहीं है। केवल अयाशी करना, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, सोना, यही क्या जीवन का लक्ष्य है? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये पाश्विक कृत्यों के लिए ये जो मनुष्य जीवन है वो हमें नहीं मिला है। इस प्रकार अविद्या के अंधकार में ग्रस्त अंधे मानव समाज के लिए श्रीमद् भागवतम वस्तुओं को उचित परिप्रेक्ष्य में देखने हेतु दीपक का कार्य करता है। यानी कि वास्तविक वस्तुओं को कि हम कौन हैं, हमने जन्म क्यों लिया है, हम भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हमारा उद्धार कैसे होगा, इसके लिए श्रीमद् भागवतम जो है वो एक सुंदर दीपक की तरह है। अतः यह भगवत विज्ञान का वर्णन करना इस परिवर्तनशील सृष्टि के लिए आदि काल से ही आवश्यक था। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि श्रीमद् भागवतम को इतने वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि कोई भी निष्ठावान छात्र इसे केवल ध्यान पूर्वक पढ़ करके या प्रामाणिक वक्ता से नियमित रूप से सुनकर भगवत विज्ञान को समझ सकता है। कितना सुंदर है, श्रीमद् भागवतम को यदि हम सिर्फ पढ़ते हैं या किसी शुद्ध व्यक्ति के साथ सुनते हैं तो भी वास्तविक जो भगवत विज्ञान है उसको समझ सकते हैं। इस युग में मानव समाज के सभी लोग जीवन सुख के पीछे इतने दीवाने हैं कि अंधकार में रहने के कारण उन्हें इतनी भी दृष्टि प्राप्त नहीं है कि वे जाने कि श्री भगवान की समस्त सुख के आगार हैं। श्री भगवान ही समस्त सुखों के आगार हैं, क्योंकि वे ही प्रत्येक वस्तुओं के परम स्रोत हैं। जन्मादस्य यथा, अत्यंत सुंदर बात यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस युग में मानव समाज के सभी लोग बहुत ज्यादा भौतिक सुखों के पीछे दीवाने हैं। उनको और इस इतना अंधकार रह गया है इस भौतिक सुखों के पीछे कि उसके कारण वो ये दृष्टि पा ही नहीं सक रहे हैं कि जिनको वो सुख समझते हैं वो वास्तव में दुख है, और जिन जिन वस्तुओं के पीछे जीव भाग रहा है और जिनको प्राप्त कर लेता है वो प्राप्त होने के बाद भी जीव को सुख नहीं मिलता। जान लेता है जीव कि इन भौतिक वस्तुओं में सुख नहीं है, लेकिन वो सुख का जो स्रोत है, जो भगवान है, जो समस्त सुख के आधार है, उनकी ओर क्योंकि इतना अंधकार है जीवन में कि उनकी ओर आकर्षण ही उत्पन्न नहीं होता है। और वास्तव में हर एक आनंद का जो स्रोत है, बल्कि प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत भगवान ही है। जन्मादस्यता, भगवान के साथ भक्ति में संबंध के द्वारा ही अबाध सुख की पूर्ण उपलब्धि संभव है, और केवल उन्हीं की संगति से हम इस दुखमय भौतिक संसार से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ये इतनी सिंपल सी बात है, वो भी कितनी दफा सुनने के बाद भी जीव जो है वो उसको अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य नहीं बनाता है कि भगवत प्राप्ति मेरे जीवन का लक्ष्य है। वो सुनता है लेकिन फिर भी भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है, भौतिक व्यक्तियों की ओर आकर्षित। वो ये सोच नहीं पाता है कि आनंद नहीं है संसार में कहीं पर भगवान के नाम के अलावा, भगवान की शरण के अलावा, भगवान की सेवा के अलावा, भगवान की संगति के अलावा। और जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक जन्म मरण का चक्कर भी नहीं छूटेगा। तो इसके लिए सीरियस होना पड़ेगा। जो लोग इस भौतिक जगत का सुखोपभोग करना चाहते हैं, वे भी श्रीमद् भागवत के महान विज्ञान की शरण ले सकते हैं और अंत में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अतः नारद को उनके गुरु उपदेश देते हैं, या ये कहें कि आदेश देते हैं कि वे इस ज्ञान को संकल्प के साथ व्यवस्थिता ढंग से प्रस्तुत करें। नारद जी को जीविकोपार्जन हेतु भागवत के सिद्धांतों का उपदेश देने के लिए कभी नहीं कहा गया, वरना उनके आध्यात्मिक गुरु ने आदेश दिया कि वे गंभीरता पूर्वक प्रचारिक की भावना से ग्रहण करें। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले देखा कि जीवों का कल्याण करने हेतु जो है वो श्रीमद् भागवतम एकमात्र साधन है। इसलिए अपने शिष्य नारद को क्या कहा, यथाहरो भगवती निराम भक्ति भविष्यति, कि जीवों के हृदय में भगवान की भक्ति को प्रकाशित करने के लिए सर्वात्मन्य खिलाधारे इति संकल्प्य वर्ण, तुम ये सोच कर संकल्प के साथ इसको वर्णित करो और ये जीवों, ताकि समस्त जीवों के कल्याण के लिए सिर्फ एक यही मार्ग है कि जीवों के हृदय में भगवत प्रेम प्राप्त हो, इसलिए तुम इसको विधि पूर्वक वर्णित करो जिससे सभी मनुष्य प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सके। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र भगवान के लिए हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाए, इसी विचार से जो ये भागवत कथा कहेगा उसी को, उसी के श्रवण करने से हमें लाभ होगा। जो व्यवसाय करने के लिए, धन कमाने के लिए, अपना मशहूरी करने के लिए, लोग मुझे जानेंगे नाम करने के लिए जो भागवत कथा करेगा ना, उसको सुन के भी लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि उसके मन में खुद ही भगवान प्रेम, भगवान का प्रेम नहीं है, प्योरिटी नहीं है, तो फिर उसके द्वारा सुनकर हमें क्या लाभ होगा। इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम साक्षात परम गुरु श्री प्रभुपाद जी के शब्दों में इन शब्दों को सुन रहे हैं। साक्षात श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इन शब्दों को श्रवण करके डेफिनेटली हमारे हृदय पवित्र होंगे और हम हृदय में भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, आगे ब्रह्मा जी भगवान की भ्रामिक शक्ति यानी माया से उबर जाने का एक सरल और बहुत ही सुंदर उपाय बताते हैं। वे कहते हैं, माया वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः श्रवतः श्रद्धया नित्यम् मायायात्मानमोहयति। मायां वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः श्रवतः श्रद्धया नित्यम् मायायात्मानमोहयति। मायां वर्णयतो मुष्य, माया मतलब बहिरंगी शक्ति के व्यापार जो माया है वो, वर्णयतः यानी वर्णन करते हुए, अमुष्य मतलब भगवान से, ईश्वरस्य यानी भगवान श्री भगवान के, अनुमोदता इस प्रकार प्रशंसित, श्रवतः श्रद्धया नित्यम इस प्रकार से सुनते हुए, श्रद्धा यानी श्रद्धा पूर्वक, नित्य मतलब नित्य रूप से कंटिन्यूस, मायायात्मा न मुह्यति, माया मतलब माया के द्वारा आत्मा मन जीव, न मुह्यति मतलब कभी नहीं मोहग्रस्त होते हैं। अनुवाद देखिए, विभिन्न शक्तियों से संबंधित भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, उनकी प्रशंसा तथा उनका श्रवण परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। यानी जो भगवान के विषय में जो हम सुन रहे हैं, भगवान के कार्यकलाप, उनका वर्णन, उनकी प्रशंसा, उनका श्रवण कैसे होना चाहिए? भगवान की शिक्षाओं के अनुसार, जैसे भगवान ने शिक्षा दी। यदि नियमित रूप से श्रवतः श्रद्धया नित्यम, यदि नियमित रूप से श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसे किया जाता है तो मनुष्य निश्चित रूप से भगवान की ब्राह्मिक शक्ति माया से उभर जा। तो कितना सुंदर उपाय है कि यदि नियमित रूप से हम ऐसे श्रीमद् भगवत गीता को, श्रीमद् भागवतम को सुनते रहेंगे तो अवश्य भगवान की ब्राह्मिक शक्ति माया से उभर जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं किसी विषय को गंभीरता पूर्वक सीखने का विज्ञान मन चले लोगों के भावों से सर्वथा भिन्न होता है। यानी कि सीरियसनेस होनी चाहिए। मन चले लोग जो अपनी मनमानी करते हैं और लोगों को किस तरह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उनसे बिल्कुल भिन्न होता है ये मन चले या मूर्ख लोग। बहिरंग शक्ति के प्रसंग में भगवान के कार्यकलापों को व्यर्थ मानकर अपने को झूठ मूठ भगवान की अंतरंगा शक्ति के में उच्च स्तर पर सम्मिलित बता सकते हैं। मगर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु सत्य तो यह है कि भगवान की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्ति से संबंधित कार्यकलाप समान रूप से श्रेष्ठ है। दूसरी ओर से जो भगवान की बहिरंगा शक्ति के चुंगल से अभी तक छूट नहीं पाए हैं, उन्हें बहिरंग शक्ति के प्रसंग में भगवान के कार्यकलापों का नियमित श्रवण करना चाहिए। उन्हें मूर्खतावश रासलीला जैसे अंतरंग शक्ति के कार्यकलापों से आकर्षित नहीं होना चाहिए। भागवत के सस्ते कथावाचक भगवान की अंतरंग शक्ति के विषय में अत्यंत उत्साह दिखाते हैं और भौतिक सुखोपभोग में मग्न छद्म भक्त गलत तरीके से मुक्त आत्माओं की अवस्था पर कूद जाना चाहते हैं और इस प्रकार बहिरंगा शक्ति के चुंगल में बुरी तरह आ फंसते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत सावधान करते हैं कि जीव को अपने स्तर के अनुसार कार्य करना चाहिए। डायरेक्ट से भगवान के जो अंतरंगा लीलाएं हैं जैसे महारास इत्यादि के अंदर कूद नहीं जाना चाहिए, बल्कि धीरे 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 प्रकृति करनी चाहिए। श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि उनमें से कुछ के का विचार है कि भगवान की लीलाओं के श्रवण तथा का अर्थ है गोपियों के साथ उनके कार्यकलाप या गोवर्धन धारण जैसी लीला के विषय में सुनना, उन्हें भगवान के पुरुष अवतारों जैसे स्वांशों विस्तारों से तथा भौतिक जगत का सृजन पालन तथा संहार जैसी लीलाओं से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु प्रबुद्ध भक्त जानता है कि भगवान की लीलाओं में चाहे वह रास लीला हो, चाहे भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति पालन या संहार हो, उनमें कोई अंतर नहीं है, अपितु पुरुष अवतारों के रूप में भगवान के कार्यकलापों का वर्णन उन पुरुषों के लिए है जो बहिरंगा शक्ति के चुंगल में फंसे हुए हैं। रासलीला जैसी कथाएं बद्ध जीवों के लिए ना होकर मुक्त जीवों के लिए हैं। अतः बद्ध जीवों को चाहिए कि वे बहिरंगा शक्ति के प्रसंग में भगवान की लीलाओं को भक्ति तथा प्रशंसा के साथ सुने। यह कार्य मुक्त अवस्था में रासलीला के श्रवण के समान ही उत्तम है। बद्ध जीव को कभी भी मुक्त जीवों के कार्यों की नकल नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री चैतन्य कभी भी सामान्य मनुष्य के साथ रासलीला नहीं सुनते थे। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत सावधान कर रहे हैं कि भगवान की जो अंतरंगा लीलाएं हैं उसको सुनने के लिए जो योग्यता है, वो योग्यता जब तक जीव के अंदर नहीं आती है तब तक उसको केवल ये भगवान की जो बहिरंगा लीलाएं हैं, किस तरह से भगवान ने सृष्टि को उत्पन्न किया, किस तरह से अपने भक्तों के ऊपर कृपा की, किस तरह से सृष्टि का पालन करते हैं इत्यादि, यही लीलाएं जो हैं उनको श्रवण करके भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को दृढ़ करना चाहिए। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत के प्रथम 9 स्कंद है जिसमें भगवान का विज्ञान समझाया गया है और 10वें स्कंद को सुनने की भूमिका बांधते हैं। इस स्कंद के अंतिम अध्याय में पुनः इसकी चर्चा की जाएगी। तीसरे संबंध में यह और अधिक स्पष्ट होगी। तीसरे स्कंद में यह और अधिक स्पष्ट होगी। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवतम को प्रारंभ से पढ़ना तथा सुनना प्रारंभ करे, सीधे 10वें स्कंद से नहीं। हमसे कई बार कुछ तथाकथित भक्तों ने निवेदन किया कि हम तुरंत ही 10वें स्कंद को हाथ में लें, किंतु हम सदैव इससे बचते रहे क्योंकि हम भागवत की को भगवत विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, बद्ध जीवों के लिए विषय ज्ञान के रूप में नहीं। श्री ब्रह्मा जैसे अधिकारियों ने इसे वर्जित किया, श्रीमद् भागवतम को वैज्ञानिक प्रस्तुति के रूप में पढ़कर तथा सुनकर बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित भ्रामक शक्ति माया से मुक्त होकर दिव्य ज्ञान के उच्चतर स्तर पर उत्तरोत्तर उन्नत होंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य का तात्पर्य पूर्ण हुआ। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ आज हमारा 7वां चैप्टर 7वां अध्याय समाप्त हुआ, जिसका मूल उद्देश्य यही है कि भगवान अपनी विभिन्न अवतारों में जीवों का कल्याण करने के लिए भौतिक जगत में आते हैं और जीव का उद्धार तभी होगा जब वो इन सुंदर सुंदर लीलाओं को श्रवण करेगा और भगवान के प्रति अपने हृदय में जो प्रेम है उसको बढ़ाएगा। बस जीव के हृदय में भगवान का प्रेम बढ़े, उसी लिए सारे साधन है और उन समस्त साधनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साधन श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करना है। तो आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं श्रीमद् भागवतम को नियमित रूप से पढ़कर हम सब उसको श्रवण कर सकें, ताकि हमारे हृदय में किंचित मात्र भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न हो सके और हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करके अपने जीवन को सफल कर सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।